खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम इफ़सियों दो बाप उसकी 10वीं आयत से चंद एक बातें सीखें, आए हम सब खुदावंद के हजूर झुकें और उसका शुक्र करें जिसने आज का दिन हम सबको बख्श दिया, उसकी तारीफ करें जिसने जिंदगी की सांसें बख्शी, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें कि उसने अपना कलाम हम सबको बख्शा है कि उसको जाने, उसे पहचाने और उसका मकसद हो जो हमारी जिंदगी के लिए है उसके बारे में इलम हासिल करें। सो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, अपने ख्यालात को, अपनी सोच को तेरे सपुर्द करते हैं। सारी रात की हिफाजत और निगहबानी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। आज इस वक्त के लिए तेरे कलाम को खुदाम खुदा जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हम सबको खुदावंद अकल और दनाई दे कि तुझे जाने, क्योंकि तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं जिसकी इबादत और परस्तिश की जाए। सो आज मेरे लबों का रखवाला बन, आए हुए तमाम बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए, तेरे खादमों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। जो कुछ भी तेरे कलाम में से हम सीखें, ना कि इस मौजूदा वक्त में बल्कि आने वाले वक्त में भी बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, उसकी हम 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ेंगे और 8वीं आयत से पढ़ेंगे। आप सबको जैसा कि मालूम है और याद है कि हम इसमें से आयत बा आयत सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही उम्दा और ज़रूरी और अहम है हमारी रोज़मर्रा की रूहानी खुराक के लिए। जैसे हम हर रोज़ तरह तरह के खाने खाते हैं, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ खाते हैं जो हमारे निज़ाम के लिए, जिस्मानी निज़ाम के लिए भली हैं, वैसे ही खुदा का कलाम हर रोज़ हमारी रूह की ताजगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो पालूस रसूल यहाँ पर इफ़सस की कलीसिया से बात करते हुए उनको सिखाता है, जिसमें से हम सीखेंगे कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि खुदा का कलाम इफ़सस की कलीसिया को, खुदा का कलाम बहुत से दूसरे लोगों को लिखा गया और उसमें से बहुत सी बातें हमारी नसीहत और तरबियत के लिए भी लिखी गई, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा की सांस, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, हम सबको हमारे लिए इसीलिए लिखा गया है ताकि हम तरबियत, नसीहत और तालीम और रासबाजी में आगे बढ़ें और खुदा के मकसद को अपनी ज़िंदगी में जानें। सो पालूस रसूल 8वीं आयत में कहता है, दूसरा बाप इफ़सियों के खत में से, क्योंकि तुम को ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इसको हमने सीखा कि निजात सिर्फ और सिर्फ ईमान लाने के वसीला से है, किसी और काम से नहीं, क्योंकि निजात कोई भी कमा नहीं सकता। निजात किसी काम से खरीदी नहीं जा सकती। निजात का काम नामुकम्मल था और इंसान इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने इस निजात के काम को मुकम्मल किया, तमाम किया, सलीब पर से जब उसने ये नारा लगाया कि तमाम हुआ, मौत पर फतह हासिल हुई, कब्र पर फतह हासिल हुई, गुनाह का सर कुचला गया और उसने कहा कि निजात का काम तमाम हुआ, अब जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि निजात हमेशा की जिंदगी ये क्या है, खुदा की बख्शिश है, तोहफा है। और 9वीं आयत में लिखा है, और ना ईमान के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। हमने कल सीखा था कि अगर कोई फख्र करे तो इस बात पर फख्र करे, अगर कोई दौलतमंद है तो वो अपनी दौलत पर नहीं, अगर कोई हिकमत वाला है तो वो अपनी हिकमत पर नहीं, अगर कोई ताकतवर है तो अपनी कुव्वत पर नहीं, अगर कोई मालदार है तो वो अपनी दौलत पर या माल पर नहीं, बल्कि इस बात पर फख्र, इस बात पर यकीन करे, इस बात को माने के खुदावंद खुदा ही भला है। और जो कोई खुदावंद को जानता है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, इस बात पर फख्र करे इस बात पर फख्र करे कि खुदावंद को जानता है, और ये सबसे उम्दा बात है। और 10वीं आयत में से आज हम सीखेंगे, मैं चाहता हूं कि 10वीं आयत आपके लिए फिर पढूं, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस आयत को हम सीखेंगे, इस आयत के हम तीन हिस्से करेंगे, लेकिन आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं चंद एक बातों पर, इससे पहले कि हम इस आयत को गहरे तौर पर सीखें। पालूस रसूल यहां पर सिखाता है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं, पहला हिस्सा, और फिर वो जो बात दूसरी इसमें दर्ज करता है, और मसीह यसू में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, और तीसरी बात, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आज हम देखेंगे कि हम उसकी कारागरी हैं। हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, खुदा ने आदम को बनाया। खुदा खालक है, खुदा क्या है, कुम्हार की मानद है। आप सब कुम्हार से वाकिफ हैं, हमारे इर्द गिर्द जैसा कि 2 नंबर भट्टा पर कुम्हार रहते हैं, वो क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं। तो यहां पर पालूस रसूल क्या कहता है, हम उसी की कारागरी हैं। हमसे मुराद वो तमाम मखलूक को और उस वक्त के ईमानदारों को जो इफ़सस की कलीसिया में मौजूद थे। वो कहता है कि हम सब उसकी कारागरी हैं। कारागरी से मुराद यानी कि जो किसी काम को अंजाम देना या किसी चीज को बनाना, और हमारा बनाने वाला कौन, खालक है, खुदावंद खुदा। पदेश की किताब इसके बारे में बड़े वाजह तौर पर कहती है कि खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। यूहन्ना पहला बाप, उसकी यूहन्ना की इंजील उसके पहले ही बाप में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। कोई भी चीज बगैर खुदावंद यीशु मसीह के पैदा ना हुई, यानी कि उसके इख्तियार से, उसके कहने से उसने हर एक चीज को वजूद दिया, और उसी ने आपको और मुझको और हर एक शख्स को, नारी को, नर को पैदा किया। सो हम क्या हैं, उसकी कारागरी हैं। लेकिन यहां पर जो पालूस रसूल बात कर रहा है, ये है आम तौर पर जिसे बारे में हम जानते हैं कि हम सबको किसने खलक किया, किसकी हम दस्तकारी हैं, किसकी हम कारागरी हैं, खुदावंद खुदा की। उसने हमें पैदा किया, उसने हमें सूरत बख्शी, उसने हम में वो तमाम चीजें रखी जो हमें जरूरी थी। उसने हमारा रंग मुकरर किया, उसने हमारे बालों को, उसने हमारे होंठों को, आंखों को, हर एक चीज को वजूद दिया जब हम अपनी माँ के पेट में बन रहे थे। लेकिन ये एक और सच है, लेकिन यहां पर जो बात पालूस उसूल कर रहा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं, यहां पर पालूस रसूल बता रहा है कि हम उसी की कारागरी हैं। खुदा की तरफ इशारा करता है, लफ्ज उसी का, खुदा की तरफ, यानी कि खुदावन खुदा खालक है और हम उसकी मखलूक हैं। हम उसकी कारागरी हैं, जिसका मतलब है कि उसने हमें तख्लीक किया, हमें वजूद बख्शा, हमें नई पदैश दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन खुदा कुम्हार की मानद है जिसने हमें नई पदैश दी। यहां पर जो बात हो रही है, वो बात हो रही है नई पदैश से मुराद रूहानी रूहानी दस्तकारी। खुदा ने हमें रूहानी यहां पर नई पदैश दी है, और यहां पर पालूस रसूल ना के सिर्फ बयान कर रहा है कि तुम पैदा हुए, तुम्हें खुदा ने खलक किया, तुम्हारी माँ की पेट में तुम्हें सूरत बख्शी। ये बिल्कुल सच है कि हमें खुदा ने बनाया। जब हम जबूर 139 देखते हैं, तो वहां पर दाऊद नबी, दाऊद बादशाह, इस बात को लिखते हुए कहता है कि तू मेरा बैठना उठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है, तूने मेरी माँ के पेट में मुझे सूरत बख्शी, और वो तमाम दिन वो तमाम अय्याम अपनी किताब में लिखे। ये बिल्कुल सच है, इसके बारे में हरगिज शोशोपन में ना पड़े। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है रूहानी पैदाइश की, जिसके बारे में यसु मसीह हमें बिल्कुल वाजह तौर पर बयान करता है। खुदावंद यसु मसीह हमें रूहानी पैदाइश के बारे में सिखाते हैं, और ये जो बात हो रही है ये रूहानी पैदाइश की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर वो कहता है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सो यहां पर बात हो रही है हम पहले ही वजूद रखते हैं, हम पैदा हो चुके हैं, हम मौजूद हैं, लेकिन ये बात कर रहा है कि जिन्होंने यसु मसीह के फजल को, उसकी बख्शिश को, उसके तोहफे को, उसकी नजात को कबूल किया, वो क्या है? नई मखलूक। मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें। आप सबको याद होगा कि यसु मसीह इसराइल के सरदार काहिन से बात कर रहा था जिसका नाम निकुदीमस था। यूहन्ना की अंजील 3 बाब मेरे साथ निकालें। वहां पर यसु मसीह निकुदीमस को इस सच के बारे में बता रहा था। तो वहां पर क्या बात हो रही है? निकुदीमस जानता था कि इसराइल का खुदा है जिसने आसमान और जमीन को खलक किया, तमाम जमीन को और सब लोगों को पैदा किया, हर तरह के परिंदों को बनाया। लेकिन वहां पर जो बात यसु मसीह उसे सिखाना चाह रहा था वो नई पैदाइश की बात थी, रूहानी पैदाइश जिसे कहा जाता है, नए तौर पर बनाना, नई पैदाइश का वजूद में आना। सो यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाप उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? यहां पर यसु मसीह नए तौर पर पैदा होने के बारे में निकुदीमस से कहते हैं। सो यहां पर 6 आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, यानी ये हमारी पैदाइश है जो हमारे माँ बाप से हमें मिलती है। हमारे माँ बाप के वसीला से खुदा हमें जिंदगी बख्शता है। और यहां पर क्या कहा गया है? और जो रूह से पैदा हुआ रूह है, ये वो रूहानी पैदाइश है। कब होती है? जब कोई यसु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करता है। और क्या लिखा है 7वीं आयत में? यसु मसीह ने उससे कहा, निकुदीमस से, ताजुब ना करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। नई पैदाइश, नई मखलूक बनने के लिए क्या करने की जरूरत है? ईमान लाने की। और इसके बारे में मेरे साथ एक और हवाला देखें, यूहन्ना रसूल खुदा के तमाम कलाम में इस बात को वाज़ह तौर पर जाहर करता है। यूहन्ना की अंजील 1 बाब उसकी 12वीं आयत में देखें। यहां पर जिस्मानी पैदाइश और रूहानी पैदाइश के बारे में वाज़ह किया गया है। यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत में यहां पर वो आपको और मुझको और हर एक को सिखाना चाहता है। लिखा है 12वीं आयत में, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, किसे? खुदावंद यसु मसीह को, उसने उन्हें, किसने? खुदावंद यसु मसीह ने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सादा लफ्जों में, जो कोई खुदावंद यसु मसीह को कबूल करता है उसे ये हक, ये इख्तियार मिलता है कि वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाए। नया रिश्ता, नई पैदाइश। और यहां पर 13वीं आयत में क्या लिखा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने यसु मसीह को कबूल किया, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के अरादा से। सादा तौर पर, ना हम खून से पैदा हुए, ना जिस्म से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, जैसे बहुत दफा माँ बाप ख्वाहिश करते हैं कि उनके पास उनके बेटा हो, बेटी हो। बहुत से शादीशुदा जोड़े जब उनकी शादी होती है तो सबसे पहले उनकी, उनके माँ बाप की, दादी दादा की, नानी नाना की ये ख्वाहिश होती है, ये इरादा होता है कि उनके घर में बेटा या बेटी पैदा हो। खासकर हमारे रिवाज में बेटे की तवक्को की जाती है। तो यहां पर यूहन्ना क्या कहता है? वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कौन? नई पैदाइश, रूहानी पैदाइश के बारे में बात हो रही है। और ये किस तरह होती है? मेरे साथ एक और हवाला देखें, पालूस रसूल भी इस सच को वाजिया तौर पर बयान करता है। सो क्यों इस सच को मैं चाहता हूं आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमें जानने की जरूरत है कि इसके दरमियान क्या हकीकत है, जिस्मानी पैदाइश और रूहानी पैदाइश की हकीकत क्या है। दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 17 आयत निकालें। यहां पर भी उस शख्स से, उस औरत से, उस मर्द से, करंथियों की कलीसिया से बात की जा रही है जो पहले ही जिस्मानी तौर पर पैदा हो चुके हैं, लेकिन रूहानी पैदाइश की जरूरत है। और आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी और आने वाली पुश्तों के लिए भी यही पैगाम है, नए सिरे से पैदा होना। तो यहां पर पालूस रसूल कहता है, दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 17 आयत, इसलिए अगर कोई मसीह में है, यानी कि जिसने यीशु पर ईमान रखा है, मुर्दों में से जी उठने का इकरार किया है, अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, नया मखलूक, नई कारागरी, तख्लीक किया गया, पैदा किया गया, नया वजूद, नई सोच। और ये वजूद और ये नई सोच क्या है, नया इंसान क्या है, कि खुदा खुद इंसान के अंदर नए तौर पर पैदा दाखिल होता है और हमारी नई पैदाइश होती है, जिसे कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना। सो जब हम इस आयत को इफ़सियों 2 बाप उसकी 10 आयत को देखते हैं, तो पालूस रसूल यहां पर सिखाना चाहता है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं, उसकी कारागरी। यसाया 64 बाप उसकी 8 आयत में लिखा है कि खुदावन खुदा हमारा बाप और कुम्हार है, और हम उसके बर्तन और उसकी कारागरी, उसकी दस्तकारी हैं, उसके बनाए हुए लोग। और यहां पर पालूस कहता है कि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए। सो आप में से हर एक, मैं आप, किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा हुए हैं। ये रूहानी पैदाइश हमारी किसी ना किसी मकसद के लिए हुई है, और वो मकसद हमें इस जमीन पर जानने की जरूरत है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। यर्मिया नबी का सहीफा उसका पहला बाप, उसका पहला बाप उसकी 4 आयत और 5 आयत में यर्मिया के पैदा होने से पहले खुदा उसे बयान करता है, सिखाता है, बताता है कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। यर्मिया पहला बाप उसकी 4 आयत, तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजल हुआ और उसने फरमाया। यर्मिया पर खुदा नाजल, उसका कलाम नाजल हुआ, इससे पेशतर के मैंने तुझे बातन में खलक किया, यानी कि इससे पहले कि तू अपनी माँ के पेट में सूरत पकड़ता, इससे पहले कि तू अपनी माँ के पेट में बनता, मैं तुझे जानता था, खुदा उसे जानता था, और तेरी वलादत से पहले, तेरी पैदाइश से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। ये यर्मिया के लिए खुदा का मकसद था। आज आपके लिए खुदा का मकसद क्या है? मत सोचें कि खुदा आपको नबी कह रहा कि आप नबी बन जाएं। नबी उस दौर में थे, लेकिन अब इस यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब कोई जमीन पर नबी नहीं है। अगर जमीन पर है तो उसके खादम, उसकी नुमाइंदगी करना ले, उसके लोग जो उसकी मनादी करें, उसकी कलीसिया। सो हमें आज, आप सबको अपनी जिंदगी में उसके मकसद को जानने की जरूरत है, कि हम क्यों खलक किए गए हैं। आने वाले हिस्सा में हम देखेंगे कि जो बाइबल हमें बताती है कि रूहानी काम, नेक अमाल के लिए हम मखलूक हुए हैं, उन्हें करना है। लेकिन आप हर एक को किसी ना किसी से बुलावे, किसी ना किसी बुलाहे बुलावे से बुलाया गया है। जैसे मर्द को खामंद, मर्द को बाप, मर्द को मसीह का मानने वाला होने के लिए बुलाया गया है, औरत जैसे कि घर का काम और दूसरे कामों में शामिल होने के लिए, वैसे ही रूहानी तौर पर हमारा एक मकसद है जमीन पर, उसे जानने की जरूरत है कि कलीसिया में हम सब का क्या काम है, हम क्यों मखलूक हुए हैं, इस नई मखलूक का, इस नए वजूद देने का, इस नई जिंदगी को खुदावन ने जो हमको दी है, उसका क्या मकसद है। कौन सा पैगाम है जैसे यर्मिया को पैगाम दिया गया कि जाकर कौमों के लिए नबी ठहर, आज हम किस मकसद के लिए जमीन पर हैं? आए हम खुदावंद के हुजूर झुके हैं। खुदा बाप कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। और आज के सारे दिन में सबके साथ हो।